एंट्री नंबर 36 मई 1998 ईस्वी से पहले तक ये समझा जाता था कि दुनिया में मुबैना तौर पर 5 ऐसी कौमें हैं जिनके पास एटमी हथियार हैं, मगर अब इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से एटमी धमाके के बाद ऐसी ताकतों की तादाद 7 हो चुकी है। हत्ता के फ्रांस ने तजवीज़ किया है कि इनको शामिल करते हुए 7 न्यूक्लियर कौमों का इज्तिमा बुलाया जाए। अजीब बात है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, मगर दोनों ने मई में जो एटमी धमाका किए हैं उनके पीछे असल दिमाग दोनों जगह दो मुस्लिम साइंसदानों का है। इंडिया में डॉक्टर अब्दुल कलाम और पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर। बीबीसी लंदन ने 1 जून 1998 को पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर का एक इंटरव्यू नशर किया। उनसे पूछा गया कि ऐसी खूनी और अमन शिकन हथियार आप क्यों बना रहे हैं। उनका जवाब ये था कि एटम बम को मैं सबसे बड़ा जामिन अमन पीस गारंटर समझता हूं। अब जबकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास एटम बम हैं, तो मुझे यकीन है कि अब उनके दरमियान कभी जंग नहीं होगी। मगर एक गैर जानिबदार मुबस्सिर के लिए इससे इत्तेफाक करना मुश्किल है। पाकिस्तान का कहना कि इंडिया ने जारहियत करके कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, यही वो मसला है जिसके लिए हमें एटम बम तैयारी तक जाना पड़ा। मगर सिर्फ एटम बम बनाने से पाकिस्तान को कश्मीर नहीं मिल सकता। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ किसी आइंदा जारहियत से रोक सके। मगर तमाम वाकयात बताते हैं कि इंडिया का ऐसा कोई जारहाना इरादा नहीं। फिर पाकिस्तान ने एटम बम क्यों बनाया? अगर पाकिस्तान अपने एटम बम को इस्तेमाल करे तो खुद डॉक्टर अब्दुल कदीर के एतराफ के मुताबिक ये इसके लिए एक खुदकशी का फेल होगा जिसमें कश्मीर और पाकिस्तान दोनों तबाह हो जाएंगे। गोया के एटम बम को इस्तेमाल करना या उसको इस्तेमाल न करना दोनों ही पाकिस्तान के लिए गैर मुफीद हैं। हकीकत यह है कि मौजूदा हालत में पाकिस्तान के लिए दूसरा ज्यादा बेहतर इंतखाब यानी चॉइस मौजूद था, और वो था सूरत मौजूदा यानी स्टेटस क्वो को मान लेना। नहायत महंगी कीमत पर एटम बम बनाने के बावजूद पाकिस्तान के लिए यही मुकद्दर है कि वो कश्मीर के मामले में सूरत मौजूदा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ना चाहते हुए भी राजी रहे, क्योंकि इसका दूसरा बदल सिर्फ कौमी खुदकशी है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को यह करना चाहिए था कि वो इस मामले में अमरीका और दूसरी मगरबी कौमों की पेशकश को मान ले। इस पेशकश में उसको दो कीमती चीजें मिल रही थी, एक नहायत फैयाजाना इक्तिसादी इमदाद, दूसरे अमरीका की तरफ से काबिल एतमाद न्यूक्लियर तहफ्फुस। हकीकत यह है कि एटम बम न इंडिया के लिए मुफीद है और न पाकिस्तान के लिए, दोनों ही के लिए वो सफेद हाथी पालने के हम माना है। دونوں ہی نے اس کو اپنے قومی فخر یعنی پرائڈ کے لیے بنایا ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں قومی دفاع کے لیے۔ جب متفقہ طور پر ایٹم بم قابل استعمال ہی نہ ہو تو کوئی فوجی مقصد اس سے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ موجودہ زمانے میں فوجی یا غیر فوجی مقاصد کے لیے پرامن ڈائلاگ ہی ایک ممکن تدبیر ہے۔ متشددانہ تدبیر اب سرے سے قابل عمل ہی نہیں۔ پرتشدد عمل میں یقینی خطرہ ہے کہ آج جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کے پاس باقی نہ رہے۔ یہاں میں اضافہ کروں گا کہ پچھلے کچھ سالوں سے برازیل اور ارجنٹینا کے درمیان ایٹمی اسلحہ کی وہی دوڑ جاری تھی جو آج انڈیا اور پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے، مگر اس کے برے اقتصادی نتائج کو دیکھ کر دونوں ملکوں کے سنجیدہ لوگ تڑپ اٹھے۔ دونوں نے آپس میں گفت و شنید شروع کی، یہاں تک کہ 1997 میں دونوں ملکوں میں ایک مشترکہ فیصلہ کے ذریعے ایٹمی اسلحہ کی تیاری مکمل طور پر بند کر دی گئی اور اپنے وسائل کو پوری طرح اقتصادی ترقی کی طرف موڑ دیا گیا۔ برازیل اور ارجنٹینا کا یہ فیصلہ بلا شبہ نہایت درست ہے۔ انڈیا اور پاکستان دونوں کو اسی فیصلے کی پیروی کرنا چاہیے۔ ایٹمی ہتھیاروں کا راستہ بلا شبہ دونوں کے لیے تباہ کن ہے، خواہ یہ ہتھیار استعمال ہوں یا استعمال نہ ہوں۔